அர்ஹந்தாளம் நமோ சித்தாளம் நமோ ஆயிரியாளம் நமோ உபச்சாயாளம் சாசுரம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கொண்டு சிந்தாசோ மங்களமங்கலம் तीसरी ढाल तक हम लोग आ गए हैं और हम उसकी तीसरी ढाल की शुरुआत आज ही तीसरी ढाल पढ़ चुके हैं लगभग। पहली ढाल में चार गति के दुखों का वर्णन ये बताया था स्टार्टिंग से ही कि कैसे ये चीज निगोद से निकल कर वैमानिक तक पहुंच कर भी वापस पंचेंद्रिय से एकेंद्रिय होकर फिर इस संसार चक्र में घूमता रहता है। दूसरी ढाल में इस परिभ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है उसका वर्णन किया गया था। इसमें ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व इन दोनों की चर्चा आई थी। तीसरी ढाल में इसके अपोजिट जो मोक्ष मार्ग है उसमें जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन की ढाल ही तीसरी ढाल है। तो इसमें तीसरी ढाल में हमने अभी तक निश्चय सम्यक दर्शन देखा और व्यवहार सम्यक दर्शन भी देखा। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का तो नहीं है उसका निरूपण दो प्रकार से है जो सत्यार्थ रूप से निश्चय कारण सो व्यवहार ये वाली बात यहाँ पर हम लोगों ने करी। फिर सात तत्वों का स्वरूप आया उसमें और उनका जैसे है वैसा श्रद्धान करना इसको सम्यक दर्शन वहां पर बताया था। अभी तक की ढाल में जितना कुछ हो गया उसमें से किसी को कोई प्रश्न है कोई डाउट है
हाँ नहीं
ओके तो हमने जो चर्चा करी थी हम एक बार उसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं तीसरी ढाल की शुरुआत से इससे हमें तो एक बहुत जल्दी आसानी होगी। ठीक है तो एक बार पाठ करते हैं पहले खंड का। आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न काते शिव मगला क्यों चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो शिव दे विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्मा का हित क्या है आत्मा को सुख हितकारी है और यह सुख कैसा होता है आकुलता के बिना होता है उसी को सुख कहते हैं। आकुलता कहाँ पर नहीं है आकुलता मोक्ष में नहीं है इसलिए हम सबको उस सुख के लिए आकुलता रहित सुख के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग दो विधि से बताया जाता है इसका जैसा है वैसा का वैसा निरूपण करना निश्चय मोक्ष मार्ग है और इसको उपचार आदि से इसके कारणों से बताना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है पे तो हमने इसमें बहुत सारी चर्चा करी थी और इसमें देखा था कि कैसे निश्चय मोक्ष मार्ग वो मूल मोक्ष मार्ग है और जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग होता है उसके जो जो पाया जाता है हम उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन मार्ग दो नहीं है, मार्ग एक ही है। ठीक है, करेक्ट। मोक्ष मार्ग ये कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व, बंद तत्व, संवर तत्व, निद्रा तत्व या मोक्ष तत्व? संवर निद्रा तत्व होगा, बराबर, एक्सीलेंट। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं देव शास्त्र गुरु भगवान की भक्ति ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति ये कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, संवर तत्व है, निद्रा तत्व है या मोक्ष तत्व है?
आश्रव तत्व।
आश्रव बंध तत्व है, करेक्ट। ये प्रशस्त राग का परिणाम है, राग का परिणाम है यानी कि इससे बंध होगा, करेक्ट। तो मोक्ष मार्ग तो संवर निद्रा तत्व होता है, और यदि आप इस चीज को मोक्ष मार्ग बोलोगे तो फिर आश्रव बंध तत्व मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाएंगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, करेक्ट। समझ में आई हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? यदि हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग मान लेते हैं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो आश्रय बंध स्वरूप है, सात तत्वों के विकल्प हुए जो कुछ भी ये सब चलेगा, यदि स्वरूप की शुद्धोपयोग परिणति से बाहर का विकल्प है तो विकल्प रागात्मक ही होगा और राग वो आश्रव बंध है, और यदि आश्रव बंध को मोक्ष मार्ग कह देंगे तो फिर संवर निद्रा को क्या कहेंगे, करेक्ट। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग तो कारण तरीके बोला जाता है, निश्चय मोक्ष मार्ग ही यथार्थ मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो एक ही है मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग दो नहीं है। दूसरा सुन, पर द्रव्य आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। इसमें निश्चय मोक्ष मार्ग का निरूपण और व्यवहार मोक्ष मार्ग की स्थानिका है, भूमिका है। परद्रव्यों से जो भिन्न अपना आत्मा, इस आत्मा की रुचि वो सम्यक है और वो भली है, वो उपकारी है, वो उत्कृष्ट है, करने योग्य है। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की जो रुचि है ये विकल्पात्मक रुचि नहीं है, यहाँ पर वो निश्चय सम्बन्ध में रुचि लेनी है, वो वहाँ पर द्रव्यों से भिन्न जो अपनी रुचि बिना किसी पर द्रव्य के विकल्प से है, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व के किसी भी विकल्प से रहित की रुचि है वो सम्मति में लेना है, निश्चय सम्मति में। देन आप रूप को जान पड़ो, पर द्रव्य को नहीं स्वरूप का ही जानना, ये सम्यक ज्ञान रूपी कला है। मतलब ज्ञान का स्वभाव कैसा है, क्या ज्ञान के स्वभाव में संभव है कि वो अपनी आत्मा को जाने? हाँ, इज इट पॉसिबल कि हम अकेली आत्मा को जाने?
हाँ,
ये संभव है कि हम सिर्फ आत्मा को जाने? स्मिथ साउंड कि नहीं ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अकेली आत्मा को जाने. क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है. राइट?
बराबर.
हेलो.
हाँ जी.
ये जो बल्ब है, ये वाला बल्ब है, तो ये इसमें इसके लिए पॉसिबल नहीं है बल्ब के लिए ये बल्ब सिर्फ अपने आप को प्रकाशित करे. ये जब बल्ब को हम स्विच ऑन करेंगे तो ये रूम में भी लाइट फैलाएगा, इसका स्वभाव है. ये खुद चलेगा तब आसपास भी रोशनी करेगा ही. राइट? ऐसे ही इस आत्मा का ज्ञान है. आत्मा जब स्वयं को जानेगा तब ऐसा नहीं है कि दूसरे को जानना बंद कर देगा. हमारी और आपकी आत्मा की बात नहीं है, केवल भगवान का आत्मा भी जो कि आत्मा में पूरा डूब गया है, वो भी परद्रव्य को जाने बिना नहीं रहता. करेक्ट? सही है ये वाली बात? तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है, आप रूप को जान प्रणोसो, सबने ज्ञान कला है. कि यही इसमें आर्ट है कि आपके ज्ञान का स्वभाव है स्व और पर को जानना. और इसमें कला ये है, इसमें आर्ट ये है कि आप उस स्व और पर में से अपने स्वरूप को पहचान लो, उसको छान लो, आप सिर्फ उस पर ही लक्ष्य करो. ये कला है भेद विज्ञान वाली कि हाँ जानने में पर भी आ रहा है स्व भी आ रहा है, लेकिन उसमें से मैं क्या हूँ, मुझे दृष्टि किस पर रखनी, ये वाली कला ये निश्चय सम्यक ज्ञान है.
तो यहाँ कला पंडित जी, यहाँ कला को प्रकाश जानना या कला को आर्ट के रूप से जानना?
कला मतलब आर्ट है, ये आर्ट सम्यक ज्ञान ये कला है, मतलब आर्ट है.
उसको प्रकाश नहीं बोलना, मैं करेक्ट?
नहीं, प्रकाश उसका एक अर्थ है, इसका दूसरा अर्थ जो गुरुदेव श्री प्रवचन में खोलते हैं. कला तो मतलब जैसे सूर्य की कलाएं होती है. राइट? तो कला की प्रकाश, ठीक है. यहाँ पर दूसरा कला सम्यक ज्ञान ये कला है. कला मतलब एक आर्ट है. क्या आर्ट है? कि ज्ञान का ही चैलेंज है. ज्ञान का स्वभाव तो हमेशा उसमें दोनों प्रकार के गेय झलकेंगे, स्वगेय झलकेगा पर गेय झलकेगा. आप पर के प्रति अंधे नहीं हो सकते कि आपको पर दिखाई नहीं दे, आपने आंखें बंद कर ली तो दिखाई नहीं देगा पर. वो हमेशा दिखाई देगा क्योंकि वो ज्ञान का स्वभाव है. लेकिन एक बीच हमारी ये जो जागरूकता कि हम पर में दाखिल नहीं होंगे, हम स्वरूप में स्थिर रहेंगे, उसमें सावधान होंगे, ये सम्यक ज्ञान की कला है. हम उसमें स्व को छान लेंगे कि हाँ ये मैं हूँ और ये मैं नहीं. आप रूप का जानपना, स्वरूप को जानना, उसमें जब ये दिखेंगे तो ये के जो विशेष है उनका तो तिरोभाव हो जाए और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो. बराबर? समयसार की 15वीं गाथा. राइट? ये विशेष इसका तिरोभाव हो जाए और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हो, ये कला है.
आपने
को ख्याल में आ रहे हो वहाँ पर?
आपने लास्ट टाइम सिनेमा का पर्दा का एग्जांपल दिया था कि वो
बराबर
सिनेमा में वो आते हैं उसमें पर्दे को देखो, एक वो जो इमेजेस आते
हैं
उसको गौण करो.
करेक्ट. हाँ, वो ही कला है. मतलब वो चित्र कहीं भाग नहीं जाएंगे, हमको उन चित्रों की उपस्थिति में ही वहाँ जिस पर चित्र झलक रहे हैं उस पटल को देखना है. गे कहीं पर जाएंगे नहीं, इन गेयों की उपस्थिति में ही हमको गेयों को गौण करके इग्नोर करके हमको ज्ञान को मुख्य करना है. ज्ञान यानी चैतन्य आत्मा. बराबर? तो ये आप रूप को जान पनो तो सबने ज्ञान कला है, ये कला है यहाँ पर. ठीक है? तीसरा आप रूप. हाँ
अनुभव जी, वैसा हम ले सकते हैं कि जो हमको जो ये आकार बनते हैं हमारे ज्ञान में, जो हमको दिखाई देते हैं सारे ये, वो इन रियलिटी वो ज्ञेय आकार है, तो ज्ञेय आकार ही ज्ञान के बने थे, तो वो ज्ञान ही है। जैसे पर्दे में, पर्दे में जो इमेजेस है वो इन रियलिटी वो पर्दा ही है ना, तो ये ज्ञेय आकार
तो देखिए इसमें, लेकिन जिसमें भी हमारा अनादि का संस्कार है ना, तो हमें क्या लगता है कि जैसे कि आई एम वॉचिंग दिस वॉल, मैं दीवार को देख रहा हूँ जो मेरे सामने है, राइट, तो मुझे लगता है कि मैं दीवार को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर दीवार है,
बराबर,
बट द ट्रू रीजन क्योंकि मैं दीवार को देख रहा हूँ क्योंकि मेरे ज्ञान में दीवार का चित्र बन रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी हैं। तो मतलब वो दीवार है इसलिए ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है, मेरे ज्ञान में दीवार का चित्र बना है इसलिए मुझे पता पड़ा कि यहाँ सामने दीवार है। हमको उल्टा लगता है, हमको लगता है सामने दीवार है इसलिए मैंने जाना, जबकि ऐसा है कि मैंने जाना इसलिए मुझे पता पड़ा कि सामने दीवार है। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छी चर्चा आती है। हम द्रव्य का थोड़ा स्वरूप समझेंगे तो हमको बहुत अच्छी समझ में आएगा। द्रव्य हम सब क्या है, हम सब जीव नाम के द्रव्य है, राइट, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जो जानता है देखता है उसे द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। इस जीव द्रव्य को जीवास्थि काय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव अस्थि काय, करेक्ट,
असंख्य
है,
तो
पंचाष्टिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ है कि स्टार्टिंग में अस्थिकाय की परिभाषा दी है। अस्थिकाय मतलब उसकी चौथी पांचवी गाथा में इसका बहुत खूब खुलासा किया आचार्य देव ने। अस्थि मतलब अस्तित्व में, जो अपने अस्तित्व से अनन्य है, तो प्रश्न उठाए कि कैसा अस्तित्व, तो इस द्रव्य का गुण पर्यायमयी अस्तित्व है। गुण पर्यायमयी अस्तित्व मतलब इसका उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक अस्तित्व है, राइट, गुण पर्याय बोलो या उत्पाद व्यय द्रव्य बोलो, बात एक है, गुण यानी कि द्रव्य और पर्याय यानी कि उत्पाद और व्यय, ठीक है, करेक्ट। हम सबका अस्तित्व कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, मतलब हम निरंतर परिणम रहे हैं और फिर भी हम ध्रुव हैं, बराबर। ये तुम्हारी अस्थि की व्याख्या, अस्थि कि हम अपने अस्तित्व से अनन्य है, मतलब हम प्रति समय बदल रहे हैं और प्रति समय हम नित्य हैं, बराबर। दूसरी बात वहां पर करी काय की, कायत्व है हमारे पास, कायत्व मतलब हमारे पास हमारे असंख्य प्रदेश है, हम अणुमहान है, हम बहुप्रदेशी है, बराबर। तो जैसे कि अकेली एक उंगली वो शरीर नहीं कहलाती, हाथ पैर नाक कान ये जब सारे मिल जाते हैं तो शरीर कहलाता है, तो हाथ अकेली एक अवयव हुआ और पूरा शरीर एक अवयवी हुआ, बराबर। तो शरीर को काय संज्ञा है, हाथ को काया नहीं कहते, हाथ तो काया का एक अंग है। ऐसे ही आत्मा के पास बहुत सारे प्रदेश है, इसलिए आत्मा के कायत्व पाया जाता है। एक प्रदेश होता तो आत्मा की कोई कायत्व नहीं कहलाता, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात क्या आई कि आत्मा का अस्तित्व कैसा है, उत्पाद व द्रव्यात्मक, और आत्मा का कायत्व क्या है, उसके असंख्य प्रदेश। तो आप इस अस्थि काय को साथ में क्यों बोलते हो, आपने अस्तित्व बताया और कायत्व बताया, इसका प्रयोजन क्या है कि वहां पर आचार्य देव बताते हैं कि ये जो इसका असंख्य प्रदेश वाला कायत्व है ना, ये जिसका असंख्य प्रदेश वाला आत्मा है, ये आत्मा में इसका जो उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभाव है ये इन असंख्य प्रदेशों में ही वर्तता है, इससे बाहर नहीं वर्तता। बात समझ में आई, मतलब मेरा जितना भी परिणमन होगा वो कहाँ पर होगा, इन असंख्य प्रदेश में होगा। दो चीजें समझ में आ रही है, दो चीजें, वन इज हमारा स्वभाव कैसा है, उत्पाद द्वैध्रव्यात्मक और इस स्वभाव का एड्रेस क्या है, एड्रेस है हमारी असल की प्रदेश, ठीक है। हेलो, वन टू थ्री चेक, आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इससे समझ में क्या आया, इससे समझ में ही आया, ये जो मैं देखो, अच्छा मेरे असंख्य प्रदेश कहाँ है, मेरे असंख्य प्रदेशों का एड्रेस क्या है, ये जो शरीर दिख रहा है ना, इस शरीर में पूरे में फैले हुए हैं, तो मेरे असंख्य प्रदेशों का वर्तमान आकार इस शरीर के आकार का है, ठीक है। तो अनुमान से मैं अपने आत्मा के प्रदेशों का आकार जान सकता हूँ यदि मैं शरीर के आकार पर ध्यान दूं तो, ठीक है। हेलो, बराबर देखो वापिस, शरीर को देखा तो हमें अपने आत्मा के आकार का पता पड़ा वर्तमान, बराबर, और आत्मा के आकार का पता पड़ा उसी समय ये पता पड़ा कि आत्मा का उत्पाद व्यय और द्रव्य, आत्मा के समस्त गुण और उनकी समस्त पर्याय कहाँ पर होती है, आत्मा के इन प्रदेशों में होती है, ठीक है। ओके, इज इट फाइन, हाँ ठीक है। अब आप अपने रूम में जहाँ कहीं भी विंडो है उस विंडो को देखिए, आपको कहीं विंडो दिख रही है आपके रूम में, कहीं पर खिड़की दिख रही है कोई, हाँ दिख रही है सबको, हाँ तो वो खिड़की कहाँ पर दिख रही है, वो सामने दीवार पे दिख रही है कि आपके आत्मा के प्रदेशों में दिख रही है,
दीवार पे
आत्मा के प्रदेशों
सोच के बताइए दो सेकेंड, वो जो खिड़की है वो खिड़की दीवार पर दिख रही है कि आत्मा के प्रदेशों पे दिख रही है, क्योंकि
खिड़की
का ध्यान
हमारे
आपकी खिड़की दीवार पर बैठे ठीक है, वो ठीक है, लेकिन खिड़की दीवार पर है ये आपको दीवार पर दिखता है कि आपके आत्मा के प्रदेशों में दिखता है,
आत्मा के प्रदेशों में
इनसाइड इनसाइड दिखता है,
क्योंकि आत्मा ने कभी अपने प्रदेश के बाहर जाके जाना ही नहीं, क्योंकि हमारी सीमा हमारा एड्रेस हमारे प्रदेश है,
बराबर,
बात समझ में आ रही है आपको,
हाँ थोड़ी थोड़ी,
अनादि का अभ्यास ये है कि हमें
के पास जाकर नहीं देखते हैं, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ वहाँ से ही जनाई देता है अपने अपने,
तो ये ऐसा जानना नहीं होता कि जैसे कि मेरे हाथ में एक टॉर्च है, मेरे टॉर्च को जलाई तो टॉर्च में से रोशनी आगे तक जाती है, ऐसा नहीं होता, हमारी आंखों में से ज्ञान आगे तक जाता है, ऐसा नहीं होता, बराबर, हमारी ही प्रदेशों में ये ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञेयों का आकार दिखाती है, तो हम देखते ज्ञान की पर्याय को है, लेकिन हमारी अनादि की दृष्टि ये उन्मुख है, तो हम दिखते ये है, यदि हम इस ज्ञान का परिचय कर लें तो जहाँ पर ये दिख रहे हैं वहाँ पर ये ज्ञान का पर्दा भी दिखेगा, ये ज्ञायक है, ये ज्ञान सामान्य है, बात समझ में आई, अरे आबाल सभी को पाल सुलभ सब को चिन्मय अभिराम, आबाल और गोपाल को प्रति समय ये ज्ञान सामान्य चिन्मय ये आत्माराम दिख रहा है, क्योंकि बिना उसे देखे वो गेय को कैसे देखेगा, कहाँ पर देखेगा, लेकिन परिचय नहीं है और कंफ्यूजन इतनी है कि सामने यदि मैं बोलता हूँ कि खिड़की है और मैं बोलूँ कि नहीं ठीक है सामने नहीं है वो तो ज्ञान में है, बट मैं 10 फीट आगे चल के जाता हूँ और टच करता हूँ तो सामने खिड़की सही में दिखती है, ऐसा नहीं है कि वो कल्पना है, वो माया है, वो ब्रह्मा ने जस्ट माया की रचना करी है, सब इल्यूजन है, सामने कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल इन द माइंड, ऐसा भी लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया एक इल्यूजन है, सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, रियल में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वस्तु वहां पर है, बराबर, वहां पर सामने विंडो है, दैट इज फॉर श्योर। और इसी कारण हम कितनी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें लगता है कि वो सामने है और हमने सामने जाके उसको टच करना चाहते हैं, हम टच भी कर लेते हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने जो विंडो को जाना वो सामने जाना, बट द रियलिटी इज कि वो सामने है, दैट इज ट्रू, बट उसका ज्ञान हमको हमारे ज्ञान में हुआ है, न कि सामने कहीं हुआ है। राइट हमारा अभ्यास ये कि हम आंखें खोलते हैं तो हमको बाहर का सब दिखता है, तो हमको ये लगने लगता है कि आंखें खुली है ना, मतलब हम सामने का कुछ देख रहे हैं, बट एक खुली आंखें सामने का कुछ नहीं देखती, ये अपने ज्ञान पर्याय को देखती है। खुली आंखें उसी ज्ञान पर्याय को देखती हैं जिस ज्ञान पर्याय को बंद आंख देखती है। आंख के खुलने और बंद होने में विषय नहीं बदलते, लेकिन हमको लगता है कि देखो बंद किया तो काला काला दिख रहा है, खोल दिया तो पूरा पूरा दिखने लगा जैसा जैसा है, तो भ्रम हो जाता है कि आंखें खोलने से हमको दिख रहा है, बट जब बंद करी आंखें तब भी ज्ञान की पर्याय को ही आप देख रहे हो, और जब आंखें खोलिए तब भी ज्ञान की पर्याय को ही आप देख रहे हो। तो एक आप रूप को जानना, एक ज्ञान सामान्य को ऊर्ध्व करना, ये एक कला है, ये बहुत इसमें पुरुषार्थ चाहिए, ये सामान्य बात नहीं है, इसमें बहुत मतलब कभी किसी काल में हम सीख भी जाए तो उसकी विस्मृति बहुत जल्दी हो जाती है। राइट क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी 6-6 महीने में कभी आत्मानुभूति होती है, निरंतर धारा तो चलती है, लेकिन ज्ञान सामान्य का अभ्यास वहाँ भी बहुत अंतराल में होता है, बहुत बड़े डेप्थ में होता है, क्योंकि अनादि का अभ्यास है वो बहिर्मुखता का है, और अचानक से अंतर्मुख हो जाना इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए।
और अनुभव जी जो ज्ञान सामान्य है वो ही में बराबर है मेरा कहना,
ज्ञान सामान्य
वो ही में,
हाँ वो ही में ये जो सामान्य ज्ञान सामान्य ये ही मैं हूँ, ये ही आत्मा है, ये जो प्रति समय आत्मा आ रहा है ना ज्ञान में, यही आत्मा है।
आत्मा
कोई हम सोचते हैं कि आत्मा कोई अलग वस्तु है, लेकिन आत्मा एक बहुत सुंदर नियमसार जी का प्रवचन गुरुदेव श्री का कलश नंबर 128 है, नॉट श्योर, उस पर बहुत सुंदर गुरुदेव श्री का प्रवचन है, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर गुणों की परिभाषा दी और द्रव्य की परिभाषा दी। उन्होंने बोला शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड, उसको गुण कहते हैं। गुण इज द समेशन ऑफ ऑल द पर्याय। मतलब भूतकाल से लेके भविष्य काल तक की सारी एक एक समय की पर्याय को जोड़ लें, वो ही गुण है। गुण उसके अलावा क्या है? हेलो
दोबारा प्लीज हेलो हेलो दोबारा रिपीट करना अनुभव जी।
हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, शुद्ध शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का जो पिंड है उसको गुण कहते हैं।
बराबर।
मतलब जैसे कि दर्शन नाम का गुण लेते हैं, श्रद्धा वाला, श्रद्धा नाम का गुण, तो अभी इसमें मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है, बराबर, लेकिन मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है, ये क्या प्रकाशित कर रही है? ये बता रही है कि हाँ मेरे पास एक गुण है जिसके कारण मैं बिलीव करता हूँ, मैं श्रद्धा करता हूँ, करेक्ट, और बाद में ये निर्मल होकर सम्यक की पर्याय हो जाएगी, तब्दीली वाली पर्याय चलेगी निरंतर, तो गुण कोई अलग चीज नहीं है, इन्हीं पर्यायों को जब हम एक पिंड रूप में देखते हैं तो वो गुण हो जाता है, क्योंकि गुण अनादि अनंत है, मतलब अनादि अनंत कोई एक समय में थोड़ी होगा, अनादि अनंत काल में ही तो होगा कोई अनादि अनंत, तो मतलब आप जब एक समय देखते हो तो आप पर्याय देखते हो, आप जब उसको पूरा देखते हो तो उसके गुण देखते हो, और सारे गुणों को एक साथ देखते हो या सारी पर्यायों को एक साथ देखते हो तो द्रव्य देखते हो। तो द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों कोई अलग अलग चीज है ऐसा मत मानना, वो तो समझाने के लिए वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस व्यवहार के द्वारा भेद कल्पना की गई है, बाकी द्रव्य तो एक अभेद वस्तु है। चक्कर से उसकी सफेदी अलग है और मिठास अलग है ऐसा नहीं है, चक्कर तो एक अभेद वस्तु है लेकिन समझाएं कैसे चक्कर क्या होती है, तो उसमें भेद कल्पना की जाती है। बात समझ में आई? तो ये जो आत्मा में जहाँ पर आपको ज्ञान दिख रहा है प्रति समय, वहीं पर तो उसके अनंत गुण होंगे, वहीं पर तो उसके सारे प्रदेश होंगे, वहीं पर तो आत्म द्रव्य होगा। हम ये समझते हैं कि आत्मा के हमको बहुत अंदर तक कहीं छुपा हुआ आत्मा है वो मिलेगा, कि नहीं अभी तो ज्ञान की पर्याय हो रही है आत्मा में ही तो हो रही है, यही तो आत्मा है।
हाँ।
पर्याय आत्मा के प्रदेश में है, जहाँ पर पर्याय है वहीं पर गुण है, वो ही द्रव्य है। तो ये जो प्रति समय जानन जानन है ये ही तो आत्म द्रव्य है।
बराबर।
इसमें से जो सामान्य सामान्य हमेशा रहने वाला है उस पर हमको दृष्टि करनी है, और जो बदल जाता है उससे दृष्टि को हटाना है, सिर्फ इतना काम है। आत्मा को आत्मा के पास जाने के लिए कहीं कुछ और दूर जाना नहीं है, जैसे आंख मीच कर बैठ जाना हो और एक आसन लगाना हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांति से बैठ कर वस्तु का निर्णय करे, द्रव्य गुण पर्याय को समझे, फिर जाने के लिए विस्तृत होता हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान किसकी पर्याय है, ऐसे मेरी है, ये पर्याय होती कहाँ पर है, अरे ये तो मेरे सर्वांग सारे प्रदेशों में हो रही है। ओके, तो अब इस पर्याय में जो ज्ञान सामान्य है इसका लक्ष्य करे, जीवों को जाने दे, जीवों को आने दो जाने दो, उसमें छेड़छाड़ नहीं करे, उस ज्ञान सामान्य की यदि हम दृष्टि बनाए, इसकी प्राप्ति के लिए इसके लक्ष्य से हम अपने उपयोग को निर्मल करें, इससे ये काम बहुत आसान हो जाता है। ज्ञान सामान्य कहीं दूर नहीं है, वो वहीं पर है जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर टीवी की स्क्रीन है वहीं पर वो चित्र है, तो टीवी की स्क्रीन को देखने के लिए चित्रों को हटाने की आवश्यकता नहीं है, इतना स्वीकार करना आवश्यक है कि देखो जैसा चित्र दिखने के काल में टीवी की स्क्रीन है, ऐसा नहीं दिखने के काल में भी टीवी की स्क्रीन तो रहेगी, ये चित्र नहीं रहेंगे, इन चित्रों के सम्मोहन में जो हमेशा रहने वाली स्क्रीन है हम कहीं इसको नहीं खराब करते, इसको नहीं भूल जाए, करेक्ट, क्योंकि स्क्रीन रहेगी तो चित्र कल को आ जाएंगे, लेकिन स्क्रीन ही खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर चित्र भी नहीं आएंगे। बराबर। इसलिए यहाँ पर इसको कला बोला, आप रूप को जान पनो, अपने को अपने स्वरूप को हम पहचाने कि मेरा जायक रूप है, मैं चैतन्य देव हूँ, जानन जानन ये मेरा काम है, मैं ज्ञान सामान्य हूँ, जानने में क्या आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मैं नित्य जानता हूँ, यही मेरा अस्तित्व है, ये मुझे सारे द्रव्यों से भिन्न अस्तित्व का ज्ञान कराता है। बराबर।
हाँ
ठीक है। तीसरी लाइन, आप रूप में लीन रहे फिर सम्य चारित तेज, स्वरूप से बाहर जहाँ भी स्थिति होगी वो सम्य चारित कहा तो जा सकता होगा लेकिन वो है नहीं, क्यों, क्योंकि वो आश्रम और बंध का कारण होगा, स्वरूप की स्थिति स्वरूप के चारित्र में कर्मों का बंध नहीं होता, कर्मों की निर्जरा होती है, तो स्वरूप में जो प्रतिपन्न किया जाता है स्थिति की जाती है वही निश्चय चारित्र है, सम्यक चारित्र है, उसके अलावा बाकी सब व्यवहार चारित्र है, उसके संवर मुद्रा नहीं होती नहीं होती नहीं होती। वो प्रशंसनीय किया जा सकता है इस अपेक्षा से कि भैया इसके बाद अब यहाँ निश्चय चारित्र होगा, लेकिन उससे जैसे मुनिराज आहार के लिए निकले हैं और इंडिया समिति से पूरे पूरी समितियां पालकर, 28 मिलजुल पालकर अपना पूरा जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका ये सब करना ये प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन प्रशंसनीय इसलिए नहीं है कि उसके कारण उनको कर्म बंध नहीं होता। वो प्रशंसनीय इसलिए क्योंकि वे इसके आधार से वापस आत्मा में डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, राइट? ठीक है, क्या हमने जमीन हमें कूदना है, हमें उचकना है, ठीक है, बहुत ऊंचा उचकना है, तो ऊंचे उचकने के लिए क्या करें, हम जमीन पे पैर रखें कि जमीन के ऊपर जाए? हाँ, if I have to jump, what do I do? मैं जमीन पर पैर रखूं कि जमीन के ऊपर उठूं?
जंप करना है तो जमीन के ऊपर पैर लाकर फिर दोबारा जमीन पर ही आएंगे।
तो जो जमीन पर आना है वो जमीन पर आना नहीं होगा, जमीन पर आया है, आई हैव टेकन द स्टेप बैक जस्ट टू यू नो टेक अ बिग राइज बिगर जंप, तो वो पीछे आना भी क्योंकि वो हमें और ज्यादा पुश करेगा ऊपर, इसलिए प्रशंसनीय कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये मतलब उसका कभी नहीं होगा कि मैं जमीन पर गिरा इसलिए मैंने जंप करी। जंप तो तभी कहलाएगी जब आप जमीन के ऊपर हो। तो ऐसे ही महाव्रत अंगव्रत आदि के विकल्प ये जमीन पर आने जैसे हैं, लेकिन ये फिर भी प्रशंसनीय क्यों है, ये चारित्र क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये स्वरूप में छलांग मारने के काम आते हैं, तो इनमें मुनिराज इसलिए आए हैं कि अगले समय वो और तेजी से स्वरूप में जा पाए, ठीक है? तो वास्तविक चारित्र तो आप रूप में लीन रहना है, वही सम्यक चारित्र है। ये तीनों निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ पर वर्णन हुआ। अब व्यवहार मोक्ष मत के लिए हेतु नियत को गई, तो यह व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय का कारण होता है। तो निश्चय का कारण ऐसे नहीं होता जैसे कि दिया प्रकाश का कारण होता है, ऐसे नहीं होता, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण होता है। ये ऐसे कारण होता है जैसे कि सूरज का उगना मुर्गे के बांग देने में कारण है, राइट? तो मुर्गा सूरज के कारण बांग नहीं देता है, बट जब सूरज उगता है तो ऑटोमेटिकली दे रहे थे। सूरज को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि सूरज इतना हमारे यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन कराता है, कितने सारे मुर्गों को चिल्लवाता है, सूरज क्या करे उसमें। ऐसे ही जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ये निश्चय मोक्ष मार्ग के उदय की गारंटी नहीं है, ये नियामक कारण नहीं है। नियामक कारण तो उसके स्वरूप का विचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये नियामक कारण है निश्चय सम्यक से। व्यवहार सम्यक से इसमें जैसे हमको वातावरण दे सकता है, एक एनवायरमेंट दे सकता है कि भाई हाँ इस कंडीशन में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम्यक चारित्र इज मच हायर देन दूसरी कंडीशन में, ठीक है?
हाँ जी।
तीसरी जीव अजीव कर्त अरि आश्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को क्यों का क्यों सर धानो है सोई तम सुख व्यवहारी अब इन रूप बखानो इनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो जीव अजीव आश्रव बंद संबल निजरा मोक्ष ये तत्व जैसे कि जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं वैसा का वैसा इनका श्रद्धान करो, ऐसा करेंगे तो जो करता है उसको सम्यक व्यवहारी सम्यक बोलते हैं, व्यवहार सम्यक दृष्टि बोलते हैं। इसलिए अब पंडित दौलत राम जी जीव अजीव वास्तव बन संवर्ण इनका स्वरूप बताएंगे, जिनको सामान्य और विशेष से सुनकर उसकी जड़ प्रतीति जड़ सिद्धांत हमको हृदय में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्यवहार सम्यक में देवशास गुरु को नहीं लेके आए, यहाँ पर व्रतादि को भी लेकर नहीं आए, आवश्यक को लेकर नहीं आए, और सरुवत को महाव्रतों को ये व्यवहार सम्यक्त नहीं है। किसको लेकर आए? सार तत्व तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, ये तत्वार्थ सूत्र में पहला सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो निश्चय सम्यक दर्शन का सूत्र है। ठीक है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सात तत्वों की अभेद श्रद्धा को लिया है। तत्वार्थ श्रद्धानम एक वचन है, सात तत्वों की श्रद्धा नहीं ली है, सात तत्वों की अभेद श्रद्धा ली है, मतलब आत्मा की श्रद्धा ली है, तो वो निश्चय सम्यक की बात है। यहाँ पर व्यवहार सम्यक की बात चल रही है कि आप सात तत्वों को अलग अलग जैसे है वैसा का वैसा मानो। इसमें जब कोई सामान्य विशेषात्मक निर्णय करके उस पर दृढ़ प्रतीति करता है तो वह व्यवहार सम्यक दृष्टि है। ठीक है, सात तत्व यही छह द्रव्य है, यही पांच स्थिकाएं हैं, यही नौ पदार्थ है, ये चारों एक ही चीज है, छह द्रव्य पांच स्थिकाएं सात तत्व नौ पदार्थ। अलग अलग एंगल से जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो अलग अलग भेद बनते हैं। जब आप उनके क्षेत्र की अपेक्षा स्टडी करते हो तो ये अस्थिकाय कहलाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। राइट, हेलो, जब आप इनकी द्रव्य अपेक्षा स्टडी करते हैं तो छह द्रव्य कहलाते हैं, इनकी जातियां अलग अलग हो जाती है। जब काल की अपेक्षा से हम इनकी स्टडी करते हैं तो ये सात तत्व कहलाते हैं, और जब भाव की अपेक्षा में इनकी स्टडी करते हैं तो ये नौ पदार्थ बन जाते हैं। राइट, एक ही चीज है, छह द्रव्य बोलो, पांच स्थिकाएं बोलो, सात तत्व बोलो, नौ पदार्थ बोलो, हमें वस्तु के स्वरूप को समझना है। इनसे वस्तु के स्वरूप को समझते हैं,
सॉरी, नौ पदार्थ भाव की अपेक्षा से बोलते हैं, और
हाँ सात तत्व काल की अपेक्षा के एक समय का कौन है, कादि अनंत कौन है, कादि शांत कौन है, अनादि अनंत कौन है। बराबर, जब हम काल की बात देखते हैं सात तत्व आ जाते हैं। राइट, और जब हम भावों को बहुत ज्यादा एकदम अंदर तक घुस के पढ़ते हैं तो आश्रव बंद में से भी हम पुण्य पाप को अलग निकाल लेते हैं, लेकिन पुण्य पाप के अलावा भी बहुत आश्रव बंद चलता है जो बुद्धि पूर्वक का है, बस पुण्य पाप में मेजर हमारा चलता है। राइट, हमें कोई पाप बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है, पाप कर दिया हमने, और हम पुण्य करने तो हमें ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है, आज तो हमने कितना अच्छा काम किया। तो उन भावों की प्रधानता को बताने के लिए पुण्य पाप को वहाँ पर अलग से हाईलाइट किया। हाँ। तो वो नौ पदार्थ होते हैं। जब हम द्रव्यों के क्षेत्र को देख रहे हैं कौन सा कितना बड़ा द्रव्य है, अस्थिकाय कौन है, तो हम अस्थिकाय की बात करते हैं, पांच अस्थिकाय। और जब हम द्रव्य की इंडिविजुअल उनके विशेष गुणों से स्टडी करते हैं, द्रव्यत्व देखते हैं उनका, तो छह भेद बनते हैं द्रव्य के, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल।
अनुभव जी, मुझे ना यहाँ एक क्वेश्चन नौ तत्वों के है कि वहाँ दूसरे तो मुझे समझ में आते हैं, आश्रम पुण्य पाप वगैरह, तो परंतु जीव यहाँ वैसे बोलते कि नौ तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति, तो वहाँ वो जीव जीव का क्या लेना, जीव कौन सा जीव लेना।
देखिए वहाँ नौ तत्वों में जो समाचार में प्रकरण है, वहाँ पर नौ तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति से प्रगटाएंगे, वहाँ पर प्रकरण ये है, दो प्रकार की वहाँ पर भेद किए नौ तत्व के, दो प्रकार, एक नौ तत्व जो अजीव रूप है, मतलब जीव में सारे के सारे मुझे छोड़कर जीव, अजीव में सारे के सारे द्रव्य जीवों को छोड़कर, आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य पाप ये सब द्रव्य रूप जो होते हैं वो द्रव्य मतलब कर्मों के उदय की अपेक्षा वाले राइट कर्मों के काम ये तो वहां पर लिया जड़ को और दूसरा जो वहां पर चर्चा करनी है वो इन नौ अलग अलग चीजों के जो ज्ञान में आकार बने वो तो ये जो ज्ञान में आकार बने थे ये तो चैतन्य द्रव्य की पर्याय हो गए नौ तत्व इन नौ तत्वों में ज्ञान की पर्याय में जो छिपा हुआ ज्ञान सामान्य है
ओके दोबारा थोड़ा लो क्योंकि वो हमेशा मुझे ये जीव और अजीव का ना इतना नहीं पकड़ में आता है दूसरे को पकड़ जाता है
हाँ हाँ वापस 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 ठीक है नौ तत्व है ये सारे के सारे परिद्रव्य है पहली बात ठीक है सबके सब यह नौ तत्वों को नहीं लेना है आप यहाँ इन नौ तत्वों को इनका जो ज्ञान में आकार आया उनको जाना आपने ये वाले नौ तत्व लेना है ज्ञान में जाने हुए नौ तत्व ना कि बाहर रखे हुए नौ तत्व तो जो ज्ञान में जाने हुए नौ तत्व है ये तो मेरी ही पर्याय में है ज्ञान में पर्याय में आए ना ये
हाँ
कि नहीं बराबर नौ तत्व बाहर वाले नौ तत्व नहीं ले रहे वो तो अजीब है वो तो जड़ है वो तो पर है बाहर है मुझसे बहुत ये मेरी ज्ञान की पर्याय में जो नौ तत्वों के आकार बने इन नौ तत्वों के भेद विकल्प में नहीं इनमें सामान्य जो ज्ञान सामान्य छुपा हुआ है इन नौ तत्वों के ज्ञान में जो एक का ज्ञान छुपा हुआ है उस एक के ज्ञान को मुझे जानना है नौ तत्वों के ज्ञान को विलीन करना है उसको गौण करना है
ओके
हाँ
मैं कभी वैसा मैंने सुना नहीं थैंक यू
प्लीज पंडित जी फिर से बोलिए आप
हेलो सॉरी सॉरी
एक बार फिर से बताइए
यहाँ पर जब शिविर लगा था पहला मंगलवाणी शिविर तो उसमें वीरेन पंडित जी ने यही वाला कलेक्ट किया था नौ तत्वों में छुपी हुई ज्योति तो उन्होंने ऐसे दो चार्ट बनवाए थे एक नौ तत्व यहाँ पर है ये नौ तत्व तो हो गए जो परद्रव्य बाहर के नौ तत्व दिख रहे हैं सामने वस्तु रूप राइट और इन्हीं के सामने नौ तत्व को जानने वाला ज्ञान इन्हीं के जस्ट सामने कि नौ तत्व है ये कैसे पता पड़ा ये ऐसे पता पड़ा कि ज्ञान में जब ये नौ तत्व आए तो पता पड़ा बराबर अब ये जो नौ तत्व का ज्ञान है ये ज्ञान नौ तत्व का है इन सब में इनको जानने वाला जो ज्ञान सामान्य है जो छुप गया है नौ तत्व के विकल्पों में भेदों में उस ज्ञान सामान्य को जानना उस वो प्रगट ज्योति है नौ तत्वों में छुपी हुई वो मैं भी उसकी दृष्टि करना है हम नौ तत्वों को देखने जाते हैं तो वो ज्ञान सामान्य कहीं गुम जाता है तो नौ तत्वों को गौर करके उस ज्ञान सामान्य को वहां पर उसको देखना नौ तत्वों में जाकर भी जो एक रूप ज्ञान की ज्योति रहती है वो वाली बात है आई बात समझ में
इन अदर वर्ड वैसे इफ यू गो बैक ये सम्यक ज्ञान कला आ गई यहाँ
हाँ हाँ वो ही वाली बात है ज्ञान सामान्य को मुख्य करना है ज्ञान विशेष से दूर होना है तो वहां पर ये बोल रहे हैं कि आपने अभी तक जो कुछ भी जाना उसमें एक समय भी ऐसा नहीं था जिस समय आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना बट दिक्कत ये हो गई कि आपकी परिणति स्वीकार करने को ही तैयार नहीं हुई कि मैंने आत्मा को जाना है आत्मा को जाना है तो वहां पर ये बोल रहे कि नव तत्व गतत्व की नौ तत्व में जाकर भी ये ज्ञान सामान्य जो आत्मा जो ज्ञान ज्योति है ये कभी मलिन नहीं हुई ये तो वैसी की वैसी रही अछूती और इसको भी आप आज भी जानने जाओगे तो आपको वहीं पर वैसी की वैसी मिलेगी
तो वहाँ अभी हाँ वो तो मुझे समझ में आ गया, ये नौ तत्व में छुपी हुई ज्योति ज्ञान ज्योति वो समझ में आया। अभी जो नौ तत्व हम बोलते हैं कि जीव जीव और अजीव, तो वो जीव जीव क्या है?
जीव अजीव आश्रवन संवर निद्रा मोक्ष तत्व में ये वाला जीव
आश्रवन मुझे समझ में आ गया, मगर जीव जीव किसको बोलेंगे? और जीव और अजीव वो
दोनों पर जीव भी जो जीव का ज्ञान हुआ है उसको लिया है।
अच्छा जीव का ज्ञान हुआ वो अच्छा और अजीव को
क्योंकि हम जीव का ज्ञान भी जीव के पास जाके नहीं करते, ज्ञान में करते हैं हम, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करते।
वो हाँ, वो आई एग्री
वैसे ही है। देखो मैं एक बार टीका पढ़ता हूँ, गाथा नंबर 13 की टीका है। यह जीवादि नव तत्व विचार के से नए से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि तीज की प्रवृत्ति के लिए अभिचार के नए से कहा जाता है। ऐसे नव तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य ताप संवर निद्रा आश्रम पंथ और मोक्ष है, उनमें प्रगटत्व करने वाले भूतार्थ नए से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नए रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण आत्मख्याति है वह प्राप्त होती है। मतलब शुद्ध नए से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु से यहाँ यह नियम कहा है। इसके आगे हाँ देखिए, इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीव है, और पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध तथा मोक्ष इनके लक्षण है, ऐसे केवल जीव के विकार है और पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध तथा मोक्ष विकार के हेतु केवल अजीव है। बराबर है, जीव की पर्याय और पुद्गल कर्म की पर्याय दोनों को लिया। ऐसे ये नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है, ऐसे द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ है और कर्म काल में अस्थिलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ है असत्यार्थ है। इसलिए इन तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध नए रूप से अनुभव किया जाता है और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति ही है, और जो आत्मख्याति है सो सम्यक दर्शन ही है। इस प्रकार यह सर्व कथन निर्दोष है, बाधा रहित है। क्या नौ तत्वों में एक चैतन्य चमत्कार प्रकाश रूप ही प्रकट हो रहा है? इसको आप एक बार और पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा।
मैं दोबारा पढ़ लूंगी। ये कौन सा आपने बोला?
हाँ, हाँ।
कलश है के गाथा।
हाँ, ठीक है। ये 13 नंबर की गाथा और उसके बाद 8वें नंबर का कलश, और इसके पहले जो 7वें नंबर का कलश भी है, तो 7वां कलश, 13वीं गाथा और 8वां कलश, इन सब में बहुत सुंदर ही चल रहा है। ठीक है, और अंतिम समय मैंने स्पीच कर दिया आप लोगों का, चलिए हम लोग जिनवाणी को भी करते हैं। निधि 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 में बकाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चुलवाणी ना को वंदना सकार है, उसके लिए चुलवाणी ना को वंदना सकार है। नौ बार दुखाने का